श्रीमद् भागवतम 10-20-12 8 मार्च 2015 स्पीकर कुमदास प्रभु
शास्त्र लिंगे द्विविधा वर्णे क्लेश निकरे महाकर्मा नरे नय दीपिता न स्वर्ग निरयो। जब तक जीव शरीर का उद्बोधन नहीं होगा तब तक वो ऐसा कार्य करते रहेंगे जो तात्पुर्य में बता रहे हैं। वृंदावन का वर्षा ऋतु हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं वर्षा। बारिश का समय स्वाभाविक, बारिश तो होगा, अगर नहीं होगा तो क्या करते लोग, अरे इस साल बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन यही बारिश शहर के लिए भय होता है क्योंकि उनके लिए 400-500 हज़ार स्क्वायर फुट का एरिया है, इससे ज़्यादा उनके पास है भी नहीं है। तो वो सोचता है इसी एरिया में अगर इतना बारिश होगा तो क्या चाहूँगा। लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत सारे जायगा है और बारिश का आनंद उठाते हैं, बारिश का मज़ा भी लेते हैं। उनके लिए बारिश बहुत अच्छा है। उस समय नदी में जो तूफान आता है उस तूफान भरी नदी में नहाता भी है आराम से, उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं। जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना वो खुश रहेगा। तो इसी में लोगों का समझदारी में ये है कि अगर ज़्यादा अनाज उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, बिजनेसमैन का सामान खरीद कौन करेगा। अभी 2-4 दिन पहले बिल आया था, जमी अधिग्रहण बिल, जिसका अन्ना हजार भी आंदोलन चालू किया। उस बिल में 2-4 बात ऐसी भी हैं जो किसान का कोई भी जमी अगर लिया जाए तो उसमें किसान किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, जो किसान विरोधी कहते हैं। दूसरा कहते हैं अगर 70% किसान अगर सहमति करता है उसको ले सकते हो। तीसरा अगर उस जमीन को अधिग्रहण कर लिया जाता है तो कोर्ट में जाके इस किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे बिल का नियम कहे, जैसे हम लोग का अपना उधर गांव में एक जो प्लॉट है 1200 एकड़ प्लॉट है हम लोग पूरा गांव का, तो गवर्नमेंट ने उसको सीज कर लिया और उसमें लोग पेड़ पौधा लगाना शुरू किया। हम लोग उसमें हाईकोर्ट कर कोर्ट में केस किया, कोर्ट के बाद हाईकोर्ट हुआ, हाईकोर्ट में हम लोग जीत गया। तो हम राता राती ही पूरा सबको निकाल कर खेती बना लिया। जिस उस समय जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वधार की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र जी की जय। गांव में सबका घर में अनाज नहीं रहते थे, लेकिन जब उस प्लॉट को हम लोग गवर्नमेंट से जीत गया तब गांव में किसी का घर में कोई अनाज का किसी प्रकार का कोई कमी है ही नहीं है। ये हमारे सामने का बात है। तो गवर्नमेंट क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं जिस हमारा वजूद बना रहे, हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें सब वोट देते रहे। कुछ साल पहले जब CPM का सरकार पश्चिम बंगाल में था तो लोग क्या सोचते थे, अगर कंप्यूटर आ जाए तो सब पंडित हो जाएगा, तो मूर्खों लोग हमको वोट नहीं देगा। सब अगर पंडित बन गया कि हम पंडित रहे, हमारा बेटा पंडित रहे, उसका तेईस बेटा सब बेटा पंडित रहे, बाकी जितना मूर्ख है ना वो परिवार पूरा मूर्ख ही रहा करे। ये उस समय इसका ये था। इसलिए जो सरकार होते हैं, एक बार मेनका गांधी एक बार ये सब रिकॉर्ड कर रही है, अगर मेनका गांधी एक बात कहा था जो कोई भी अगर एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो उसका संपत्ति करोड़ों में जाता है, बोलते 900 करोड़ करके एक एक जो पार्लियामेंट के मेंबर लोग हैं उनके पास इतना करके संपत्ति है। इलेक्शन एक बार जीत जाता है तो समझ लेते हैं क्या हमारा नसीब खुल गया, वास्तव में खुल गया। अभी कुछ दिन पहले एक रेलमंत्री बना गया सदानंद गौड़ करके, उसका 3 करोड़ था, 6 महीने बाद उसका कितना 11 करोड़ रुपया हो गया। तो सोचो 3 करोड़ जिसका प्रॉपर्टी दिखाया, 6 महीने बाद 11 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, कितना बेनिफिट। ये समाज व्यवस्था जो यहाँ पर चित्रण किया गया है। पूंजीपति डरते रहते हैं, खाने के लिए धरती पर कोई वस्तु का कमी नहीं है अगर उसका सही वितरण हो। आज अरबपति में शायद 21 अरबपति इंडिया में है, 21। लास्ट में एक बार ऐसा होगा जे पृथ्वी का पूरा भाग धनाढ्य का हाथ में चला जाएगा, धनी व्यक्ति के हाथ में, और गरीब वास कुछ नहीं बचेगा, ये स्थिति होने वाला है। तो इसके लिए नेता लोग कुछ भी करके इलेक्शन जीतते हैं, जीतने के बाद जिससे पैसा लेते हैं उनको पैसा चुकाने के लिए जनता का इस प्रकार काम करता है जिससे जनता मजबूर होकर के उसको वहाँ से हटा दे, लेकिन जब तक हटा तब तक जनता का पूरा डूब जाता है। ये राजनीति बात है। तो इसको समाधान कैसे हो सकता है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अते मायातारे देशं सार्दु, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, मायाजाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। सिंपल बात है। भगवद गीता कहते हैं श्रीदं सर्वभूतानां गातामं शांतिम इच्छति। हमारा आपसे देश है, आप दूसरा से देश करते हो, वो तीसरा से करते हैं, देश चलते रहता है। लेकिन जब हमें ये ज्ञान होगा कि यहाँ पर जितना सारे लोग, यहाँ का ही बात पूछो, यहाँ पर जितना सारे लोग बैठा हुआ है सबका हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, वो हमारे हृदय में भी है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे हृदय में आत्मा है, आपका हृदय में आत्मा, जितना सारे लोग बैठा है सबका हृदय में आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, विभिन्न नाम से कहते हैं। तो जब हम एक ही कैटेगरी का है तो हमें देश करने का आवश्यक क्या है? इसको बोलता है जीव स्वरूप का उद्बोधन। तो जीव स्वरूप का उद्बोधन कैसे होगा? जब गुरु का सेवन किया जाए, गुरु का सेवन, सेवन शब्द का अर्थ देखो, प्रसाद सेवन तो हम लोग खा जाते, गुरु का सेवन तो गुरु को खा जाएंगे, कोई कोई व्यक्ति गुरु को भी खा जाता है। अब देखो गुरु कैसे खाते हैं, तो गुरु अगर गुरुगिरी करते रहते हैं लेकिन शिष्य लोग उसके ऐसा भाव चढ़ा देता है जो गुरु समझ नहीं पाता हमारा जाएगा क्या है। ये गुरु को खा जाता है शिष्य लोग। तो गुरु और शिष्य का जो पारस्परिक संबंध है इस तत्व को हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए। जब हम इसको समझेंगे तो संसार में वैषम्य उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए कहते हैं स्वरूपार्थ ही नाम, जीवेर स्वरूप, हमारा स्वरूप कृष्णदास है। एक समय था जो खेती में जितना अनाज होता था उसमें से संसार आराम से चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन आज आपका पास अगर 20,000 है तो संसार चलाना आपके लिए भारी पड़ जाता है। मिनिमम 60-70 हज़ार अगर मंथली अगर आपका इनकम है तब शांति से संसार चला पाओगे। मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 60-70 हज़ार तो आसान से आप संसार चला सकते हो। गांव में रहोगे, अभी तो नहीं है, गांव में अगर रहा जाए तो 60-70 हज़ार रुपया पूरा साल के लिए काफ़ी हो जाता है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। 60-70 हज़ार गांव के बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ हम जिस जगह में रहते हैं उसका 1,000-1,500-2,000-2,500 मेंटेनेंस देना पड़ता है, जो हमारा दुकान का खर्चा आता है गांव में। फिर भी हम सोचते हैं हम बहुत सुखी है, और गांव वाला क्या सोचता है, अरे संसार के शहर, अच्छा चलो शहर भागे। हमारा समय में गांव में हम लोग कभी सब्जी खरीद नहीं करते थे, कोई कोई कभी भी कोई सब्जी नहीं। और अभी गांव में उसी गांव में वही जमीन पड़ा है, वही तालाब है, सब कुछ है, लेकिन आज किसी का घर में एक भी सब्जी खेती में उगता नहीं है। और उस समय इतना सब्जी उगता था, टमाटर 5 पैसा किलो, 5 पैसा पैसा रुपये नहीं है। मैंने अपना ही खेती है, 10,000 टमाटर का पौधा लगाया था, तो टमाटर बेचने गया जो अब तो हमको 25 रुपया घर में लेके आया बेच के, उतना 1.5 क्विंटल टमाटर लेके गया था बेचने के लिए, पूरा खर्चा लेके हमें 25 रुपया घर आया। बाद में क्या क्या जितना टमाटर हुआ वो जो खाद बनता है ना उसमें डालते गया हम लोग को, ये खेती में फायदा है। जो भोपला भी कितना 6 रुपये किलो मिलता है, 15 पैसे किलो हमको सेल करना पड़ता था, वो भी बुला करके लेके जाओ, ऐसा खेती इतना सुविधा है। अभी भी ऐसा नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे, आज जो राइस इधर बेच रहे हैं अस्पताल में, देखो कोना में क्या बोलता है, ऑर्गेनिक बोलते हैं, अपना उधार कितना अभी 5 रुपये किलो है वही ऑर्गेनिक, और यहाँ लेने जाओ 80 रुपये किलो है। सुबह भिगाओ, सुबह आकर उसको बॉयल करने बैठा हुआ, शाम तक बॉयल होने वाला नहीं है ऑर्गेनिक है, हम लेके देखा है बॉयल नहीं हुआ, ये परिस्थिति है। तो ये सब चीज़ क्या दाई कौन है, क्योंकि हम क्या सोचा जो हम ज़्यादा सुख और सुविधा अगर हमें मिले तो हम अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। सुख और सुविधा वस्तु क्या है, सुख किसे कहते हैं? एक कुत्ता रोड में सूखे सुखी है, एक भिखारी एक झोपड़ी में सुखी है, एक मध्यवित्त वन रूम किचन में सुखी है, एक हाई फाई व्यक्ति 4,000-5,000 स्क्वायर फीट फ्लैट में भी सुखी है। अगर कुत्ता से लेकर के वहाँ तक जाया जाए, सुबह अपना जाएगा, मैं अपना समाज में अपने आप में सुखी है, कुत्ता को पूछो दुखी है क्या, बोला कि नहीं हम तो सुख से हैं। तो सुख का परिभाषा अपना अंदर है, हम सुखी कैसे बनेंगे, हम कैसे सुख से रहना चाहते हैं, ये सुख का परिभाषा अपने आप में लेना पड़ता है। अगर हम स्वल्प में संतुष्ट रहे तो हम सुखी हैं, और इन्हीं अप्रवासी चौ जिसका कोई ऋण नहीं है, आज ऐसा कोई बोल सकता है हमारे पास ऋण नहीं है? जिस घर में रहते हैं वो भी कर्जा में लोन में है, बैंक से लोन लिया, हर महीना उसको परसेंटेज देते रहते हैं 20 साल तक, हम सुखी हैं। सुख किस बात का है, हम अपने आप को सुखी समझते हैं? सुबह लोकल ट्रेन का धक्का खा के जाते हैं, रहते हैं, बोलते हम कितना सुखी है, उसमें तो सबको ही सुखी है। लेकिन ये सुख का परिभाषा ही ऐसा है जो व्यक्ति अपना अपना टेटास में रह करके वो उस दुख को ही सुख भावते हैं। वास्तव में सुख बोल के इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है, है संसार सुख का ही कारण है। क्या सुख है? अगर हम संसार का समस्त वस्तु का हरि सेवा का उपकरण समझे तो हमें दुख बोल के कोई वस्तु ही नहीं जाएगा। जितना सारे वस्तु है, जितना सारे चीज है, सब चीजों को अगर हम समझे सब हरि सेवा का उपकरण है। अभी देखो हम लोग इस संसार को समझते हैं, जिसके पास अच्छा पत्नी है, जिसके पास धन दौलत है, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा सुखी है, हमारा समझ का है। लेकिन एक हरिभक्ति क्या समझते हैं, जो हरिभक्त होता है उसके लिए दुखदायी है। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास करोड़ों संपत्ति था और अप्सरासों में पत्नी था, लेकिन जब उनको भक्ति करना शुरू किया, जब महाप्रभु का चरण उसका अनुराग हुआ, तो उसको त्याग कर दिया। तो क्या स्त्री व संपत्ति सुख का कारण है? हो सकता है विषय के लिए स्त्री या संपत्ति सुख का कारण हो सकता है, लेकिन भक्त के लिए स्त्री या संपत्ति सुख का कारण नहीं होता है। यही भक्ति का अगर हम करेंगे, ऐसा नहीं है जैसे हम लोग सब तिलक करते हैं, माला करते हैं, जप करते हैं, मंदिर आते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा में हमें उन्नति होता है कि नहीं, हमें देखना चाहिए। कि हमारा वैराग्य हो रहा है। अगर हम वैराग्य आचरण करके करने जाए तो बिल्ली का और चुल्ली का सामने दूध नहीं पीने का ढोंग है। वैराग्य अपना आप आएगा। इसी रघुनाथ दास गोस्वामी में वैराग्य आया, उन्होंने संसार को त्याग करके भजन में लग गया। और हम संसार छोड़ के भजन करना आके फिर दोबारा संसार के लिए आकृष्ट हो रहे, ये हमारा भजन है। भजन का परिभाषा क्या होना चाहिए? घर को मंदिर बनना चाहिए, मंदिर को घर नहीं बनाना चाहिए। जब मंदिर को घर बना लेंगे तो हमारा भजन कहाँ रह जाएगा? घर को मंदिर बनाएगा तो हमारा भजन होगा। लेकिन हम समझते मंदिर ही हमारा घर है, वो हमारा तो कैसे भजन हो सकता है? तो सदा सर्वदा भजन का परिपाटी रखने के लिए अगर हम सही तरीके से सब चीज को अगर अपनाते हैं तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। जिस प्रकार कोई स्त्री अगर पहला गर्भवती होता है तो किसी को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब गर्भ धीरे धीरे वृद्धि होता है तो सबको मालूम पड़ता है स्त्री गर्भवती है। ऐसा ही अगर हम भजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय का जो भक्ति है वो भक्ति का विकास ऐसे होते रहेगा, जिसके द्वारा हम समझ जाएंगे, फिर लोग समझ जाएंगे उसका आचरण, उसका विचार, उसका तरीका, सब कुछ कैसे कैसे चलते हैं। तो ये सब चीज का अगर हम सही ढंग से करना चाहते हैं, ताते कृष्ण भजे करे गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णर चरण। गुरु का सेवन, विश्रम भेन गुरुर सेवा, भक्तिमय सिंधु में लिखा गया है, विश्रम भेन गुरुर सेवा, विश्रम भाव से गुरु का सेवा करना चाहिए। अगर इस प्रकार सेवा हम करते हैं तब हमारा उन्नति हो सकता है, नहीं तो क्या होगा? हम क्या हुआ, स्टैंपिंग, जैसे रबर स्टैंप आते रहेंगे जाते रहे। लोचन दास ठाकुर कहते हैं, लोचन बोले सही पापी एलो आर गेलो, इतना सारे मेहनत करने के बाद भी अगर अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव होना तो जरूरी है, अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है इतना सारे करने के बाद भी, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा भजन में त्रुटि है। और इस त्रुटि को दूरीभूत करने के लिए व्यक्ति को प्रयासरत होना चाहिए, नहीं तो हम मन में केला खाते रहेंगे, भाई हम तो रोज सोलोमाला जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम भक्त हैं। लेकिन भक्त का दूसरा चीज भी हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा ना, उस बाजू एक तो हम देखते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं भक्त है, लेकिन भक्त का जो परिभाषा है उस परिभाषा का ऊपर हमें तो दृष्टि डालना पड़ेगा। अगर इसको नहीं देखे, ज्ञान वैराग्य अनुभव तीनों वस्तु आना जरूरी है। अगर तीनों वस्तु ना आ रहा है तो हमें समझना चाहिए, अगर हमें उन्नति करने की इच्छा है तो हमें इसी प्रकार प्रयासरत होना चाहिए, जिस प्रयास के द्वारा हमें ये तीनों का तीन हो सके। इस जगत में लोग क्या समझते हैं, दुख निवृत्ति परम सुख है। अगर हमारा दुखों का निवृत्ति हो रहा है तो समझते हम सबसे बड़ा सुखी है। आत्यंतिक जो दुख निवृत्ति, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, स्वरूप स्वस्वरूप का उन्मोचन बा उन्बोधन, जैसे एक घर अच्छा से मकान एक अच्छा से बना हुआ है तो ये सब जगह बंद है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा अंदर क्या क्या है क्या नहीं है? जब उसका द्वार खुल दिया जाएगा, जब अंदर का प्रविष्ट होकर देखोगे तो देखे अरे हाँ, ये वास्तव में ये बहुत सुंदर मकान है। तो ही हमारा दुख व सुख जो है वो मन का एकमात्र भ्रम है। और इस मन का भ्रम का दूरीभूत करने के लिए सदगुरु पदाश्रय करके अगर हम हरिभजन करते हैं तो हमारा ये दुख का अत्यंतिक दुख जो है इसका निवृत्ति होकर के क्या होगा, परम सुख का प्राप्ति हो सकता है। इसलिए ये सब चीज जो वस्तु है इस वस्तु को जानकारी देने के लिए व्यासदेव ने आविर्भूत होकर के शास्त्र का रचना करके हम मनुष्य समाज को उपहार रूप प्रदान किया। उन्होंने लिखा जिस देवे पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु तस्ते कथिता हर्ता प्रकाशन्ते महात्मनो। भगवान में जैसे भक्ति करते हैं वैसा भक्ति गुरु में भी करना पड़ेगा। कहीं कहीं जाएगा में भगवान से भी ज्यादा गुरु को पर भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन हमें कभी भी गुरु को भगवान नहीं समझना चाहिए, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। गुरु भगवान से कम नहीं है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। गुरु का जूता अगर चमड़ा का हो, वो जूता भी भगवान में का अल्टार में रख करके पूजा किया जा सकता है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने लिखा है। समाधान संपद बोल के एक बुक है, उस जगह में लिखा गया है, उस जगह में भी लिखा गया है ये धर्म ग्रंथ अगर चामड़ा का बाइंडिंग प्रश्न किया था किसी ने, ये धर्म ग्रंथ गीता भागवत जो ग्रंथ है इसको अगर चामड़ा में बाइंडिंग किया जाए क्या ये शुद्ध हो कि अशुद्ध है, तो उन्होंने कहा ये धर्म ग्रंथ चामड़ा में बाइंडिंग हो या किसी वस्तु में बाइंडिंग हो सदा सर्वदा शुद्ध रहता है। जिस प्रकार मृदंग शुद्ध है लेकिन वो डूबी दौड़ाता है ना, उसको अशुद्धि कहा गया है, वो शुद्ध नहीं है। क्यों? कि मृदंग में हरि कीर्तन का सहायक है, डूबी तबला हरि कीर्तन का सहायक नहीं होता है, इसलिए उनको उस जगह में अशुद्धि कहा गया है और इनको शुद्ध कर गया है। उन्होंने इस जगह में ये भी लिखा जो आप पहले बताया, जो गुरु का जूता का चमड़ा का हो, उस चमड़ा का जूता भगवान का सिंहासन का रख करके उसमें पुष्प दिया जा सकता है, यहाँ तक लिखा है। तो गुरु क्या वस्तु है? गुरु सेवक भगवान है, भगवान सेव्य भगवान है। गुरु वैकुंठे भगवान श्याम गृहस्थ कुलोपालक, वैकुंठे भगवान श्याम गृहस्थ है और उस कुल का पूरा वैकुंठ का पालक है और उस पालक का पालक सूत्र में गुरुदेव उसका भंडारी है। गुरु का कार्य क्या है? कृष्ण का जितना सारे सेवा का उपकरण है जगत में सबको इकट्ठा करके कृष्ण का चरण में डालना, ये नहीं है जैसे अभी गांव में चलता है, गुरु आया कान में कुछ बोला, गमछा धोती कुर्ता बर्तन वगैरह लिया, डाल राइस गेहूँ दक्षिणा लेके गुरु अपना चला गया, लोग समझा क्या हम गुरुकरण किया है। अगर व्यक्ति वास्तव में गुरुकरण करता है तो उसका लक्षण क्या है? विषय में अनासक्ति होगा। अगर विषय का वृद्धि हो रहा है तो समझ लेना चाहिए आज तक हम गुरुकरण किया ही नहीं। समझ लेना चाहिए जो अभी तक हम गुरु का किया ही नहीं, गुरुकरण हमारा हुआ ही नहीं। कि गुरुकरण करने वाला दिव्य ज्ञान जो तो दिद्यात कुर्यात पापस्य संकयम तस्मात दीक्षा दी सा प्रोक्ता। दीक्षा किसे कहते हैं? जिसे दिव्य ज्ञान दिया जाता है। और जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो अज्ञान तो रह नहीं सकता है, लेकिन हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी हम अज्ञान में ही है, ये हमारा है। अभी तक तो मैं यार मेरा वस्तु से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, ये मेरा है, अरे मैं हूं, इससे अभी तक तो हम छूटा नहीं है। और इसी का वजह से होते न के नाते हम आपस में झगड़ते रहते हैं तो हमारी वजन कहाँ हो रहा है, दीक्षा कहाँ हुआ है। तो दीक्षा करने के बाद क्या करना पड़ता है? शिक्षा लेना पड़ता है। शिक्षा अगर ना लिया जाए तो दीक्षा का परिपूर्ण नहीं होता है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, बोला हमारा तो एडमिशन हो गया, जाके फाइनल एग्जाम देने के लिए चला जाएगा, साल का लास्ट में जाएगी एग्जाम का दिन, बोलेगा मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, एडमिशन लेते एग्जाम देने तकलीफ क्या है? लेकिन आपने अगर पढ़ाई नहीं के जाकर लिखोगे क्या? लिखना तो पड़ेगा, क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख पाओगे। उसी प्रकार दीक्षा लेने के बाद शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। तो कृष्ण दीक्षा सिख विषयन, दीक्षा के बाद कृष्ण भजन के बारे में शिक्षा करना अति आवश्यक है। इसलिए कहते हैं जस्य देवे पराभक्ति यथा देवो तथा गुरु। गुरु में इस प्रकार भक्ति करो जिस प्रकार भगवान में भक्ति करते हो। गुरु भगवान से किसी प्रकार का न्यूनो नहीं है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है, लेकिन गुरु को भगवान जैसे सम्मान देना आवश्यक है। अगर इस प्रकार कोई शिष्य करता है तो क्या होगा? जगत में जितना सारे अनर्थ है, उतना अनर्थ व्यक्ति अपने आपके द्वारा दूरीभूत नहीं कर सकता, लेकिन वो गुरु को सेवा के द्वारा जगत में जितना सारे अनर्थ सबको दूरीभूत कर सकता है। इतना पावर है गुरु में। बोलेगा साल में तो एक बार भी गुरु का दर्शन नहीं होता है, तो हम गुरु का सेवा कैसे करें? बराबर ना? इसकी जगह में कोई कोई शिष्य कंप्लेन भी है, अरे गुरु का तो साल में भी एक बार दर्शन नहीं होता है, दीक्षा दिया चला गया, गुरु किधर है? महाप्रभु गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। बराबर ना? महाप्रभु आज से 520 साल पहले आया था, तो अभी तो महाप्रभु का संग नहीं है, तो अभी हमारे साथ महाप्रभु कोई संग है ही नहीं है, तो हम गौरांग का संगी कैसे बनेंगे? गौरांग का जो भजन प्रणाली है, क्या भजन प्रणाली है? विप्लम्ब भाव में कृष्ण सेवा, विप्लम्ब क्या है? जिसे कहते हैं वैराग्य शब्द नहीं आएगा, विरह। आप किसी से प्रेम करते हो, यहां चला गया, तो उसका जो आपको दुख है वो दुख को विरह कहते हैं, और उस विरह को अच्छी भाषा में विप्लम्ब कहते हैं। तो ये विप्लम्ब भाव में सेवा अगर भगवान का किया जाता है तो महाप्रभु का संगी है। तो महाप्रभु आज से 520 साल पहले है, तो अभी भी जो व्यक्ति इस प्रकार भजन करता है वो गौरांग का संगी है। बाकी सब क्या है? गौरांग का दास है, गौरव दास। गौरव दास और गौरव संगी अंतर है। गंभीरा में महाप्रभु है, बहुत सारे उड़िया और गोड़िया भक्त है, महाप्रभु के साथ में कौन है? स्वरूप दामोदर राय रामानंद, तीसरा व्यक्ति नहीं है, एक गृहस्थ एक सन्यासी। देखो हम लोग विचार करते हैं ना, अरे गृहस्थ है ये सन्यासी है, इसका साथ नहीं खाऊंगा, उसका साथ खाएंगे, वो सही है ये गलत है, हमारा भजन नष्ट कर देगा, इसका साथ बात नहीं करेगा, हम भी आश्रम धर्म से परे नहीं जा पाया है। महाप्रभु ने क्या किया? एक सन्यासी का गृहस्थ है, स्वरूप दामोदर सन्यासी है, राय रामानंद गृहस्थ है, महाप्रभु वैराग्यवान है, दोनों महाप्रभु का सेवा कर रहे हैं, दोनों ने महाप्रभु को सुख दे रहा है, गृहस्थ भी दे रहा है सन्यासी भी दे रहा है। ये गौरांग वैद्वित आचार्य नहीं आ सकता था क्या, जो महाविष्णु को बता रहे? शिवास पंडित जो नारद जी है, गदाधर पंडित जो राधा का भाव है, लेकिन गंभीरा में किसी के प्रवेश नहीं है। गंभीरा में स्वरूप दामोदर राय रामानंद तीसरा व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही गोविंद जो है, जो महाप्रभु की सेवा करते हैं हर समय, वो भी नहीं है। तो विप्रलम्ब वस्तु क्या है? विरह। जब विरहान्वित तो होकर के हम कृष्ण सेवा करेगा, विरह कहाँ से आएगा? विरह का उत्पन्न कहाँ से होगा? विरह आएगा कैसे? विरह आएगा हरि नाम से, क्योंकि हरि नाम जो विरह का ही है, वो संभोग का नहीं है। इस महामंत्र हम उच्चारण करते हैं, ये विरहात्मक मंत्र है, ये संभोगात्मक मंत्र नहीं है। यही विरहात्मक जो मंत्र है, इस मंत्र का अगर सुष्ट भाव में उच्चारण अगर हम करें तो हमें भी उस विरह का प्राप्ति होगा। वही दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से हृदय तदरोग कातरम भ्रम्यति किंकरान महम। पूर्व गोस्वामी बरसाना जावट वृंदावन तीन प्लेस है, वहां पर बैठ करके लिख रहे हैं। जब ये श्लोक उन्होंने लिखा, वही दीनो दयार्दनाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक्य से, तो इतना विरह हुआ, इतना विरह हुआ, वो वृंदावन में जितना कदम का झाड़ था सब पता झड़ गया। एक भी झाड़ में, कोई झाड़ में एक भी पता भी नहीं रहा विरह। इस विरह का भाव ऐसा है, ये जमुना हाई टाइट में बह रहा है, लेकिन उसमें जब मरने जा रहा है तो जमुना का पानी इससे ऊपर उठता ही नहीं है। विरह में व्यक्ति प्राण रख के क्या कर, जाके जमुना में कुदी मार के सुसाइड हो जाऊं। जमुना उफान में जा रहा है, लेकिन जब कुदी मारने जा रहा है व्यक्ति, कुदी मारता तो इससे ज्यादा पानी होता ही नहीं है। इसको बोलता है विरह। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थदर्शी ने टीका लिख रहा है वृंदावन के झाड़ का नीचे, मूसलधार में बारिश हो रहा है, लेकिन जहां पर लिख रहा है वहां पर बारिश नहीं गिर रहा है। एक सेठर सेठानी देख रहा है, अरे इतना बारिश, लोग छाती लिख जा रहे, लेकिन जहां पर वो बोट के लिख रहा है उस इतना एरिया में बारिश गिर जा नहीं रहा है। भजन, भजन के अपना जेब का पॉकेट का पैसा नहीं है, निकाल के दे दूंगा, निकाल के ले लूंगा। भजन करना पड़ेगा, भजन करेंगे तभी होगा। जगत कल्पतरु है, इसको हम द्वारी क्या है, द्वारिका में कोई संपत्ति का कम नहीं होता है। द्वारिकापुरी में कोई संपत्ति की कमी है नहीं, इसकोन क्या है, द्वारिकापुरी है। कितना आया, कितना गया, कितना खाया, कितना लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द्वारिकापुरी उठेल संपत्ति चलते रहता है, लेकिन हमारा सर्वनाश हमें नहीं करना है। अगर हमारा सर्वनाश हमें करने जाए तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। भगवान क्या सोचते हैं, हमारा तो लड़का है जो क्या, घाटा हमारा होता है। ये हमें सोचना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कुछ फर्क पड़े क्या? बाप का जेब से अगर बेटा 2-10 रुपया निकाल के ले लिया तो बाप का कुछ फर्क पड़ता है? अरे वो लिया होगा, चल तू है। हमें भजन करने के लिए इसी परिपाटी को हमें शिक्षा दीक्षा में लाना पड़ता है। तो विरहात्मक जो नाम है, तो नाम को हमें उसी प्रकार हमें लेना पड़ेगा। सही हरि नाम लई लो मागिया, जीवो जागो जीवो जागो गुरा चांद बोरे। तो हरि नाम क्या, वही तो हरि नाम, तो वही हरि नाम है। तो महाप्रभु का संगी वही है जो महाप्रभु का उपदिष्ट पंथा के द्वारा कृष्ण भजन करता है। तो महाप्रभु को उपदिष्ट पंथा क्या है, महाप्रभु क्या बोला, भारत भूमि तो हुई मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। पहले अपना जन्म सार्थक करो, पहले खुद भक्ति लाभ करो, फिर जब खुद भक्ति लाभ करोगे तो आप दूसरा को भक्ति प्रदान करो। घोड़ा डिंगाया घास खाना, मेरे पास नहीं कुछ हम देने जा रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो मेरे पास तो भरपेट होना चाहिए। हाँ, गुरु आज्ञा प्रचार अपनो भजन, गुरु का आज्ञा में जो प्रचार कार्य है वो अपना भजन है, वो अलग वस्तु है। गुरु ने कहा प्रचार करो, प्रचार कर रहे हैं, वो अपना भजन होता है। गुरु आज्ञा शिरोधार्य, इसलिए जो अगर हम सही तरीके से अगर भजन करेंगे तो जगत में कोई भी वस्तु हमारे लिए अप्राप्य नहीं होगा। आगे कहते हैं छांदोग्य उपनिषद में, उत्तिष्ट जाग्रत पाप्यवरा निबोधत खुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत कवय वदंती। कठो उपनिषद का श्लोक है, वेद पुरुष स्वयं साधु लोग को हितोपदेश दे रहे, साधु को संबंध कहते हैं, हे साधु, हे भक्त सकल, नानाविध विषय चिंता से निवृत्त हो जाओ। जब तक अन्य चिंता रहेगा तब तक अनन्य चिंता नहीं हो सकता है। अरे घर में पड़ा हुआ है, अरे उधर बिजनेस में, अरे इधर ये है, अरे बच्चा है, अरे ये, ये सब अगर टेंशन, कृष्ण का चिंता कब तक करोगे? तो अन्य चिंता होगा तो अन्य चिंता नहीं हो सकता है। तो अगर अनन्य चिंता करना चाहते हो तो अन्य चिंता को त्याग करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं जे नानाविध विषय चिंता से निवृत्त हो जाओ, अनर्थ को त्याग करके अपना स्वरूप में अवस्थित हो, महत व्यक्ति के पास जा करके उनसे भगवत भजन का शिक्षा करके भगवान का जानने के लिए प्रयत्नशील हो। इस संसार क्या है? खूर का धारा, खूर मतलब अभी ब्लेड बोलने समझ जाओगे। अच्छा, ब्लेड का धारा आपको दिखाई नहीं देता है लेकिन थोड़ा सा अगर ऐसा करता है पूरा काटता है, वो ब्लेड को खूर कहते हैं, जिसे शेविंग किया जाता है। अभी तो ब्लेड हो गया, उस समय लोखन का बना हुआ रहता है, गाँव में अभी नहीं चलता है। तो भजन जो है वो ब्लेड का धार से भी तीक्ष्ण है। और ये भजन नहीं, संसार, संसार जो है ब्लेड का धार से भी तीक्ष्ण है, बहुत दुखदायिनी है। इस दुरत्या संसार का अगर उत्तीर्ण होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? भगवत संबंध ज्ञान छोड़ के दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। भगवत महान भक्त लोग इस संसार निवर्तक ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनका नाम का संकीर्तन करते हैं और सदगुरु पाद आश्रय में भगवत अनुशीलन छोड़ के इस संसार से उत्तीर्ण होने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। आगे कहते हैं वही उपनिषद में, कठोपनिषद में, नायमात्मा प्रवचन लिभवन मेधयान बहुना श्रुतेन जमे वैसे वृणुते तेन लिभ तस्व विवृणुते तस्व आत्मा वृणुनुते तनुष्याम। ये जो परमात्मा वस्तु है ये बहुत तर्क वितर्क करके आप नहीं जान सकते हो, ज्यादा पांडित्य के द्वारा भी आप नहीं जान सकते हो। जब जीवात्मा अपना सुकृति के द्वारा भगवान का प्रति सेवनमुख होगा और सेवनमुख होकर के भगवान का कृपा का जांचा करेगा, तब उस परमात्मा अपना स्वयं तनु उस भक्त का सामने प्रकट करेंगे। अगर किसी का सिर में आग लगा दिया जाए, थोड़ा कपड़ा बांध दिया, कपड़ा बांध थोड़ा पेट्रोल व केरोसिन व डीजल डाल दिया, फिर एक माचिस लगा दिया जाए, वो क्या करेगा? दौड़ के जाकर तालाब में कूदी मारेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कि तालाब में जैसे कूदी मारेगा आग बुझ जाएगा, लेकिन आप पानी डालोगे मग में तो शायद नहीं भी बुझ सकता है। ये दौड़ के जाकर तालाब में कूदी मारे तो तुरंत आग बंद हो जाएगा। इस प्रकार ये संसार संतप्त तो जो व्यक्ति, उनको एकमात्र कर्तव्य क्या होता है? वेद वेदांत पारक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। तो ये जो है, जब गुरु के पास जाएगा, गुरु कृष्ण कृष्ण कृपा छोड़ के गुरु नहीं मिलता है, और गुरु का कृपा छोड़ के कृष्ण नहीं मिलता है। दीक्षा का पहले जो हम हरिनाम करते हैं वो हमारा गुरु प्राप्ति करने का सहायक होता है। दीक्षा से पहले आप कितना भी नाम लो उसमें आपको प्रेम मिलने वाला नहीं है, ये 100% है। वो हमारा दीक्षा के लिए कृष्ण प्राप्ति दीक्षा प्राप्ति करने का सहायक होगा वो नाम। तो नाम अगर जितना अच्छा से लेंगे उतने हमें दीक्षा लेने के लिए सुविधा होगा। दीक्षा लेने के बाद जब हरिनाम करेंगे तब क्या होगा, अगर सुष्टु भाव में नाम लेते हैं तो हमारे उसमें प्रेम उत्पन्न होगा। दीक्षा का पहले अगर हम सुष्टु भाव में नाम उच्चारण करें तो क्या होगा, पापनाश होगा, सुकृति होगा, लेकिन प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो प्रेम उत्पन्न इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु अवज्ञा रूप एक अपराध है, तीसरा अपराध है नाम अपराध में। अगर कोई सोचेगा तेजी लो दीक्षार जला, नालोई लो तिलक माला, निजे कोई लो नवीन विधान कल्याण कल्पतरु, दीक्षा लेने का जरूरी क्या है? भगवान ने कहा जैसे तैसे नाम लो, नाम और नाम कारी बहुत सर्वशक्ति, आप कैसे भर के नाम ले लो तो नाम लेने से आपको उद्धार हो जाएगा। चलो अभी दीक्षा भी लेने का नहीं, शिक्षा भी लेने का नहीं, तिलक भी नहीं लेने का, कुंठी भी नहीं लेने का, अपना आप में एक नया मत चालू करके सब कोई हरिनाम कर दे भगवत धाम चला जाओ, कोई नहीं जाएगा क्योंकि अपराध है गुरु अवज्ञा रूप अपराध। कि गुरु का गुरुकरण करना ही नहीं जाता, किसी को अनुगत रहना ही नहीं जाता है, और जब तक अनुगत नहीं होगा तब तक भजन नहीं हो सकता है। अनुकुल्यनो कृष्णानो श्रीनो सवनो भक्ति उत्तम, अनुगत आपको होना ही पड़ेगा, किसी का अनुगत होना पड़ेगा। तो अनुगत अगर नहीं होगा तो भक्ति कहां से होगा? सेवा करने के लिए आप जैसे चाहिए वहां पर, वहाँ दुकान से पढ़ा लिया और आप जाके कूदी मार के चला गया, क्या आप भोग लगा सकते हो? आप बार हमारे अंतर के हम जाके भोग नहीं लगा सकते क्या? आपको भी इतना हमारा भी है, उससे जो कुछ है क्या? कुछ तो फर्क तो है नहीं है। तो हम अंदर रख के भगवान का सेवा कर रहे हैं, बोले हम नहीं कर सकते। आप भी तोड़ फोड़ के जाके भगवान को भोग लगा के निकाल गया तो आपको भोग हो गया। प्रोसेस है, विधि है। भगवान कहेगा जब आप कुछ भी करो हमारा पुजारी किधर है, आपको वहाँ आके खड़ा रहना पड़ेगा ले करके, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो वही वस्तु पुजारी अगर आते हैं वो लेके भगवान को देगा तो भगवान बोला हाँ ये हमारा पुजारी है, हमको ऑफरिंग किया, हमको स्वीकार स्वीकार है हमारा वस्तु। तो भगवान का सेवा करने के लिए इस प्रकार माध्यम का जरूरी है। इस प्रकार माध्यम अगर नहीं होगा, गुरु अगर नहीं होगा तो हम भगवत धाम व भगवत प्राप्ति कर भी नहीं सकता है। इसी बारे में कठोर पुरुष आयुर्वेद श्लोक दिया है, श्रवण अयापि बहुर्भीर जो नलभ्य श्रृणंतपि बहुभु जंगन विद्यु आश्चर्य वक्ता कुशलश्च लब्धा आश्चर्य गाता कुशलनु शिष्ट। उस भगवान बहुत व्यक्ति का श्रवण गोचर भी नहीं होता है, और बहुत बहुत लोगों का भगवत कथा सुनने का सौभाग्य नहीं होता है, और बहुत लोग सुनने का बाद भी उसको अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उस आत्मा का बारे में उपदेष्टा अत्यंत दुर्लभ है। अगर उपदेष्टा सुलभ हो रहा है लेकिन श्रोता है ही नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम दे दिया देखो। बहुत सारे कोई वक्ता बोलता है तो सुनने वाला भी नहीं रहता है, और बहुत सारे सुनने के बाद उसको धारण नहीं कर सकता है, और बहुत सारे अगर वक्ता अच्छा हो तो श्रोता नहीं है। वक्ता दो है, स्वराग और निराग। भागवत कथा हो रहा था एक जगह में, सुंदर भागवत कथा कह रहे हैं, तो साधु का दाढ़ी रहता है, अभी तो दाढ़ी अभी शेविंग रहता है, लेकिन उस समय साधु लोग का दाढ़ी रहता था। साधु अपना भाव में भागवत कथा कर रहे हैं, माता जी लोग सुन रहे हैं, अब बुरा मत मानना। तो एक माता जी का आँख से आंसू आ रहा है, तो बाबा ने बोला ये तो बहुत बड़ा भक्त है, इतना सुंदर सुन रहा है, इसका आँख से आंसू गिर रहा है। तो उसको पूछा माँ आपका आपके आंसू क्यों है? मैं क्या कहूँ प्रभु जी, आपको जितना भागवत कहता कहता, आपको जितना मुंडे हिलाते ना, हमारा एक बकरी था उसका ऐसे दाढ़ी था, हमको कुछ दिन पहले बकरी गायब हो गया तो उसको याद में मुझे याद आ रहा है, इसलिए हमारा आंख से आंसू आ रहा है। ये भी भागवत सुनना है, इसे बोलता है सुनने का बाद भी अनुभव नहीं होता है तो अनुभव होना जरूर है, इसलिए क्या कहते हैं शास्त्र, तस्माद गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे ब्रह्मे निष्णात पर ब्रह्म उपाश्रवम। गुरु का पास गुरु कैसे होना चाहिए, समस्त शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, शिष्य कुछ भी प्रश्न करेगा उसको जवाब देना चाहिए, और पंडित तो बहुत गुरु मिल जाएगा, वेद वेदांत है ना, बहुत सारा आश्रम सुबह सुबह देता है, बहुत सारा है आपको वेद वेदांत उपनिषद पूरा बोल देगा, लेकिन अनुभव नहीं है, कुछ काम का नहीं है। अगर आग बुझा हुआ है उसमें अगर घी डालोगे तो आग प्रज्वलित नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अगर शास्त्र ज्ञान होते भी अनुभव नहीं है तो ऐसा गुरु कुछ काम का नहीं है, अनुभव होना अति आवश्यक है। तो ये अनुभव अगर ना हो, जो व्यक्ति अधोखोज अनुभूति लाभ किया है, माधवपुरी गोपाल सभा के लिए चंदन लाने जब गया तो रेमुना के जब खीर जोड़ा गोपीनाथ को दर्शन किया तो माधवपुरी वहाँ देखा जो द्वादश खीर भोग लगता है, तो वहाँ भोग लगने के बाद उन्होंने इच्छा हुआ कि खीर का थोड़ा सा अगर प्रसाद मुझे मिलता था तो यही प्रसाद कैसे लगता है, ऐसा में खीर बना के गोपाल को खिलाता था। विचार देखो, उन्होंने क्या सोचा, उनका मेंटेलिटी क्या है, इसका जैसे साध है वो साध को देख करके वैसा सुस्वादु खीर हम बना करके गोपाल को भोग लगाएंगे, ये नहीं ये दो चार चम्मच हमको मिल जाए फिर हमारा पेट भर जाएगा, हम हाथ धो के चला जाएंगे। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि में अगर स्वीकार किया जाता है तो प्रसाद का फल प्रसाद होता है, अगर प्रसाद का पेट भरने के लिए अगर इच्छा किया जाता है तो प्रसाद पेट ही भराएगा, प्रसाद सेवा कोरित है सकल प्रपंच जय जिंदगी में नहीं होगा। ख्याल रखो जिंदगी में भी नहीं होगा, करोड़ों जन्म तक इसको उनका प्रसाद होगा कुछ होने वाला नहीं है, अगर बोले पेट भरेंगे और भर जाएंगे कोई भी होने वाला नहीं है, भूल जाओ। लेकिन अगर प्रसाद को प्रसाद से माधवपुरी ने इसे लगा देख के गोपाल को लगाऊंगा, अगर प्रसाद का प्रसाद बोल के स्वीकार करते हैं तो भी प्रसाद का महत्व होता है। ये बोलेगा अरे दवाई हो ना दवाई, दवाई अगर लिया जाए जाने व अनजाने दवाई तो अपना काम करेगा। हम लोग उदाहरण देते हैं ना, ये एक दूसरे का बच्चा को मुंह फाड़ता हाँ करके नाक दवाई डाल के नाक को बंद कर देता है तो बच्चा ढक करके खा लेता, तो बोले दवाई पेट में जाए तो काम करेगा, बस तो में काम करेगा, लेकिन आपका पास तो वो काम नहीं है ना। आपको अगर बोले ये चलो ये चाकू आपको हाथ काट देगा तो आपका हाथ चाकू से हाथ काटोगे, क्यों नहीं काटोगे, तो आपको ज्ञान है हाथ काटेगा हमारा हाथ ज्वाइन होने वाला नहीं है, ये ज्ञान हमारे पास है। तो इसी प्रकार जो हमारे पास एक ज्ञान है जो प्रसाद को प्रसाद बुद्धि में स्वीकार ना करने से हमारा प्रसाद फलप्रसू नहीं होगा, तो हमारा अगर पेट भरेंगे इच्छा से खाएंगे तो हमारा पेट ही भरते रहेंगे, कृपा कहाँ होगा। ये दोनों उदाहरण देने से पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हम उदाहरण कैसे दे के कैसे ना दे, हमारे पास तो ज्ञान है कि नहीं है, हमारे पास ज्ञान है लेकिन उस नाक दबा के जिसको दवाई देता है उसको पास ज्ञान नहीं है, अगर जहर दे दिया जाए तो मर जाएगा। तो अगर बोला नहीं नहीं आप जहर भी खा लो आप तो क्या नाक आपको तो ज्ञान नहीं है जहर है अब खा लो आप मरोगे नहीं, मरोगे नहीं मर जाओगे ना। उसी प्रकार ज्ञानवान पापी और अज्ञान पापी दो पापी है, एक ज्ञान पापी एक अज्ञानकृत पापी। ज्ञान पापी का पाप नष्ट नहीं होता है, अज्ञानकृत पापी का पाप नष्ट हो जाता है। तो ज्ञानकृत हमें पाप नहीं करना चाहिए, अज्ञानकृत हमारा पाप हो जाए चलो ठीक है हम जानते नहीं हो गया भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन ज्ञान की तो हम जानते हुए भी अगर कोई पाप कार्य करे बोला कि ये सब ज्ञान पापी है, इसको क्षमा करने का जरूरी नहीं है, ये स्थिति है। इसलिए अगर हमें भजन करना है ना, तो सब जायगा में अच्छे से ये राख करके हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर उपसमश्रयाम, इस शब्द का अर्थ क्या है? उपशांत, अर्थात जिनका चित्त में किसी प्रकार चांचल्य का सृष्टि नहीं होता है वो गुरु होने का योग्य है। शब्द ब्रह्म निष्णात हो, परब्रह्म निष्णात हो, और क्या है, जिसका चित्त में किसी प्रकार का चांचल्य उत्पन्न नहीं होगा। हरिदास ठाकुर सुंदर वेश्य आ गया, रात का अकेला निर्जन, हरिदास ठाकुर का चित्त चांचल्य हुआ गया। हरिदास ठाकुर हरिनाम कर रहे हैं, वेश्य आके अपना पूरा कपड़ा निकाल के बैठा हुआ है, पूरा ये कर रहे हैं, हाव भाव दिखा रहा है। हरिदास ठाकुर का चित्त चांचल्य हुआ, वेश्य का चित्त चांचल्य हो गया, वो उसमुस कर रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। लास्ट में वो वेश्य अपना वेश्यागिरी त्याग करके भक्त बन गया। बोलो, इसको बोलता है उपशांत। जिन गुरु का किसी विषय वस्तु में देखने के बाद भी चित्त चांचल्य ना हो उसको उपशांत कहते हैं। इसलिए भागवत का उपसमश्रयाश्रम, तस्मात गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु सर्वोत्तम शब्द ब्रह्म निष्णात, शब्द निष्णात परब्रह्म उपश्रयाश्रम। परब्रह्म में इस प्रकार उसका चित्त स्थिर है जो बाह्यिक कोई वस्तु अगर आए उसका चित्त चांचल्य नहीं होगा। रूपा जी अमेरिका में गया, अमेरिका में जाएगा है जहाँ पर सब लड़का लड़की सुअर फॉग होता है ना, सुअर वो कीचड़ में कैसे घूमता है और ड्रामा कर रहा है, ये कर रहे हैं लोग सब नांगा, लीला में तो पढ़ो के मिल जाएगा। तो नांगा होकर के वो कीचड़ बनाया, कीचड़ में सब इधर घूम रहा है, इधर जैसे सुअर घूमते हैं ना, ऐसे पार्टी खा रहा है, ऐसा पार्टी खा रहा है। प्रभुपाद का अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद को दिखाने के लिए लेके गया, प्रभुपाद वहाँ देखा, बोला ये आप लोग का आने का स्थान नहीं है, आप लोग इधर मत आया करो। प्रभुपाद को कुछ नहीं हुआ, ये बाकी को विकार हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य मठ, जो वर्तमान चैतन्य मठ है, वहाँ पर नवद्वीप धाम का प्रचार करने के लिए, धाम का प्रचार हो, कोई जानता नहीं नवद्वीप धाम क्या है, इसका प्रचार करने के लिए बाहर से अच्छे अच्छे जो कलाकार है उसको पैसा दे के लेके आया धाम में, बढ़िया कीर्तन करो। तो कीर्तन करेगा तो बाहर का कलाकार आ, जैसे कोई हेमा मालिनी का अगर डांस करे इधर तो हम लोग क्या बोलेगा, अरे हम भी चलो जाके देखेंगे, बराबर ना, हम भी देखेंगे, हम भी गया था देखने के लिए युवा में, पहला पहला टिकट लेके गया, 200 रुपये 250 रुपये टिकट देना पड़ा था, हम भी गया था, ऐसा नहीं किया था। तो ये भक्ति ठाकुर वहाँ आयोजन किया, पूरा आजू बाजू का जितना गांव का लोग सब आ रहा है देखने के लिए, बड़ा कलाकार है, कीर्तन हो रहा है, चलो सब कोई जाए। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत और स्वरूप जाने लगा, तुम नहीं जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए नहीं है। बोले क्यों? बोला तुम हरि भजन करना है, उसका नाच देखने कीर्तन सुनने आया है, विषयी का व्यक्ति का मुंह से कीर्तन सुनोगे तुम्हारा सत्य ना सुनने वाला है, जानते हो, जाओ घर, घर में जाके लॉक करके हरि भजन करो, जाओ माला लगा माला करो, उनको भेज दिया रूम में, खिड़की लगा हरि नाम करो, बाकी सबको बोला सब आ जाओ सब आ जाओ सब आ जाओ। क्यों? क्योंकि बहिर्मुख व्यक्ति को बहिर्विषय से अगर आकृष्ट करना है तो उसको बहिर्विषय देना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास इधर आने वाला नहीं है। हरि भजन कर ले कितना व्यक्ति का उत्साह है, कौन चाहता हम भजन करेंगे, कोई नहीं चाहता हम भजन करेंगे, सब चाहता रहे हम आराम से रहेंगे, शांति से रहिए, भजन का चक्कर में कौन पड़ेगा। तो भजन करना इतना सहज साध्य मत समझो, भजन एक दूरह व्यापार है, भजन करेगा तो जब भजन करोगे तब उसमें आनंद आएगा। जिस प्रकार एक उदाहरण देखो, सुंदर उदाहरण है, माता जी लोग ज़्यादा जाना यार, पिताजी प्रभु जी लोग कुछ भी नहीं जान सकता है। स्त्री का संतान जब जन्म लेता है उसमें जो व्यथा उत्पन्न होता है उस व्यथा को कहते हैं जो लाइफ टाइम याद रहता है। तो अगर कोई स्त्री को व्यथा का अनुभव हुआ, दूसरा जिसका संतान नहीं हुआ उसको अगर कहे या गर्भधारण मत करना, ऐसा बहुत दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, तो क्या उस स्त्री गर्भधारण नहीं करेगा अपना संतान सुख के लिए? तो उस प्रसव होने के बाद जो संतान उसको मिलता है उसमें जो सुख मिलता है वो प्रसव वेदना को भूल जाता है। ये हरिभजन है। हरिभजन करने में जो दुख होता है लेकिन दुख का जो परिणति जो सुख होता है, वो सुख का जो अनुभव जिसने किया वो कभी हरिभजन त्याग नहीं करेगा। समझिए इसका वर्णन शिशि में दिया गया है। जैनो तप्त इक्खु चौरवन, गन्ना खाए आप लोग उसको आग में जला के खाओ, आग में गर्म करो गन्ना को, आखा गन्ना, फिर उसको खाओ, मुंह जलेगा लेकिन टेस्ट ऐसा रहेगा आप छोड़ भी नहीं पाओगे। तब तो इक्खु चौरवन ये स्थिति है। ये हमारे हरिभजन है। चलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।